أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج کے اس وقت کا اور اس جگہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کے ساتھ آج کا سیشن شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بات کہنے اور سننے کی توفیق دے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہو، اور ہم جو سن کر جائیں، سیکھ کر جائیں، وہ پھر ہم مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کی روشنی میں آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے یتوبون من قریب، توبہ کرنے میں جلدی کرنا. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہماری سیریز کے ساتھ جو چل رہی ہے، اور سیریز کیا ہے؟ زہر الفساد فی البر والبحر. فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں، اس سے کیا جوڑا اس کا؟ جو لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں نور القرآن ٹی وی پہ یا مائی نور القرآن پہ یا مکسلر پہ، جہاں سے بھی آپ سنتے ہیں، اور جو لائیو بھی آتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم اپنے ہر ٹاپک کو اس سوچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں فساد کہاں پھیل گیا، خشکی اور تری میں فساد کہاں سے آ گیا ہے. تو بندوں کا رب کے ساتھ تعلق اور بندوں کے تعلقات کا خراب ہونا، اس کو فساد کہتے ہیں. اور جب یہ فساد ہم دیکھتے ہیں تو آج کا اس ٹاپک کے ساتھ فساد کیا ہے، بڑے غور سے کہنے اور سننے والی بات ہے. اور یہ بتا دوں کہ یہ لیکچر نمبر 16 ہے اس سیریز کا. اگر آپ نے یہ سیریز پوری سننی ہے تو اس سے پیچھے 15 لیکچرز نور القرآن ٹی وی NURLQURAN TV ایک ہی لفظ ہے، اس میں جا کر اوپر پلے لسٹیں ہوتی ہیں، شاید تھرڈ ٹیب ہوتا ہے پلے لسٹ کا، اس میں پی کے ٹرپ 21-22 میں سے آپ سن سکتے ہیں. ہر ٹاپک ڈفرینٹ ہے، کوئی ٹاپک ریپیٹ نہیں ہوا کبھی. اس ٹاپک کو سمجھ لیں، آج کے دور کا فساد کیا ہے. لوگ برائی کو برائی نہیں کہتے. رات کو ہم کہیں بیٹھے تھے، ایک میٹنگ تھی، تو اس میں ایک برادر نے سنایا کہ دیکھیے ہمارے اندر جہالت کتنی ہے. جہالت اتنی ہے کہ لوگ میوزک کے نام پر کہیں تو کانسرٹس کرتے ہیں نا، میوزیکل نائٹس کرتے ہیں، بدنام ہے. گلوکار، اداکار، یہ لفظ ہمارے شریف شرفا لوگ کبھی اس کو بہت ناگوار سمجھتے تھے، لیکن آج کیا حال ہو گیا؟ نعتوں کے ساتھ میوزک، سیم ڈی جے والے آ کر آپ کی نعت خوانی، جس میں میوزک اور جس کے ساتھ باقی چیزیں، اس میں بھی وہی سیٹ اپ کرتے ہیں، اور اگر ادھر ہی مہندی اپٹن ہوگا تو وہی کرتے ہیں. تو کسی نے کسی سے سوال کیا، ایک ٹیچر تھے تو وہ ایکسپیرینس سنا رہے تھے، کہ کسی نے کہا کہ سر مجھے اتنا بتایا کہ اسلام میوزک کو پسند نہیں کرتا، تو کیا گانا سننا اور قوالی ود میوزک گانا، ان میں سے کیا چیز زیادہ بری ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ینگ بچے کا سوال تھا کہ قوالی سننا زیادہ برا ہے میوزک کے ساتھ، یا غلط شعر ہیں جو بھی، وٹ ایور، یا گانا. یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا چیلنجنگ سوال تھا. ٹیچر نے کہہ دیا قوالی سننا، تو تھوڑی سی آوازیں اٹھ گئیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اندر کانسرٹ اچھے ہیں اور یہ وہ. خیر میں اس پہ میں واقعہ سنا رہی ہوں، میری اپنی کو پرسنل اوپینین نہیں اس وقت، صرف ایک واقعہ. تو وہ جنہوں نے یہ جواب دیا نا، انہوں نے دلیل میں کیا کہا یہ سن لیجئے. انہوں نے کہا سنو بیٹا، جب کبھی تم گانے سنتے ہو یا کچھ کرتے ہو، تمہارے دل میں یہ احساس، تمہیں یہ پتہ ہوتا ہے نا یہ گناہ ہے. کہا جی انکل گناہ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ اچھا نہیں لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں. تو کہا جو قوالی سنتے ہیں ایسے طرح، کیا وہ اس وقت گناہ سمجھ کے سن رہے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں انکل. کا یہی وجہ ہے کہ گانا سننے والا ندامت کے مارے توبہ کر لے گا، لیکن نیکی کے نام پہ غلط کام کرنے والا توبہ بھی نہیں کرے گا. یہ ہے فساد. آج لوگ غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ غلط کام کرتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بالکل آخری صحابی بنتے ہیں، टाइम इरा के हिसाब से, यानी उनके बाद दौरे सहाबियत ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी के बिल्कुल खादिमे खास थे। क्या दुआएं ली होंगी आपसे कि अल्लाह ने लंबी उम्र दी, औलादों में भी अपने अच्छे नक्श छोड़े। तो वो किसी मौके पे कहते हैं कि नबी सल्लम के दौर में जिस गुनाह को हम एक पहाड़ समझते थे जो हमारे सर पे गिर जाएगा, आज तुम लोग उसको नाक पे बैठी हुई मक्खी समझ के उड़ा देते हो। सोचिए जरा। और वो हजरत अनस का दौर और आज 2022, आज वो क्या कहेंगे? आज सर के बालों को लोग आ जाते हैं, क्या मतलब ये गुना? आपका क्या ख्याल है कि हमको गलत काम करते हैं? यानी जब बंदा गुना करे और डरे, अल्लाह बचा लेगा। लिख के रख ले जुमले, मैंने इसे बीसियों बार बोले हुए, बोलते हुए याद आ गए। बंदा गुना करे और डरे, अल्लाह जरूर उसको तौबा की तौफीक देगा। किसी ने कहा कि देखो वो रब, तुम रात को गुना करके सोते हो, उसकी नाफरमानी करके सोते हो, और सुबह सूरज के साथ ही तुम्हारा रिस्क फरिश्ते के हाथ फिर भेज देता है। हम होते कहते कलाम नहीं करूंगी, बच्चे ही ना माने तो माँ ने करना भी कोई नहीं, दिल के हाथों मजबूर है, लेकिन कहना चलो तुझे खाना नहीं दूंगी, मैं नहीं पकाऊंगी रोटी, और ना खाए तो फिर खुद ही पीछे फिरती है। अल्लाह इतना प्यार करता है, रात को गुनाह करके सोता है इंसान और सुबह अल्लाह उसका रिस्क दे देता है, उसकी आंख ठीक है, उठते ही उसकी कमर नहीं तख्ता बनी होती। वो अपने बंदों को उनके गुनाहों के बावजूद नवाज रहा है, रिस्क दे रहा है, मामला तो उसके अच्छे कर रहा है। एक इंसान होता अगर अल्लाह की जगह पे तो वो तो कभी हमें बर्दाश्त ही ना करता। और इसी तरह से आप देखिए, जब गुनाह करें और डरें, अल्लाह बचाता है ना। लेकिन जब बंदा गुनाह करे, नंबर एक, फिर उसकी रीजनिंग करें, उसकी लॉजिक्स पेश करें, वो कैसे होती हैं? कोई नहीं है जी ये गुनाह, सब करते हैं, आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये खुशी का मौका है, ये जी गम का मौका है, ये जी फलां है, ये सारी रीजनिंग है। नहीं जी हम नहीं बच सकते, अच्छा आप चुप करें ना, इतनी हमें नसीहतें ना आप करें, ये है सारे लॉजिक्स। जब बंदा गुनाह करे और ना डरे, बल्कि उसको साबित करे कि ये गुनाह नहीं, अल्लाह पकड़ लेता। तो आज के टॉपिक को अगर लेने के लिए हम देखें, तो मैंने आपके सामने आयत रखी सूरत निसा की 17। अल्लाह करे आप पे से कोई हाफिजा हैं तो वो खुद सोच लें, और अगर आयत नहीं याद तो मेरे साथ साथ चलिए। इन नमत तौबा तो कलमा हसर है, इन नमा जहाँ आ जाए ना इसके अंदर कि इसके बाहर कुछ नहीं, जैसे ये चार दीवारी है ना, तो अगर आप ब्लॉक कर दें तो चार दीवारी के बाहर कुछ और है, अंदर आपकी मस्जिद है, राइट। यानी इसके हिसार में चीज जब आती है ना, तो इसके बाहर कुछ नहीं। जैसे इन नमल आमालू बिन नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पे है। यानी अगर मैं इसको, इसी सिर्फ आयत को हम कुरान का हिस्सा समझे ना तौबा के मौजू पे, कोई और आयत ना हो, अल्लाह के नबी का कोई फरमान ना हो, तो इस आयत से मुराद है कि इसके अलावा तौबा और कोई नहीं है। और वो क्या है? इन्नम तौबतु, बेशक हाँ ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक, ये जो लफ्ज़ है ना अल्लाह, अपॉन देम या अपॉन अल्लाह, अरबी जुबान में लफ्ज अला जो होता है ना अगेंस्ट के मानों में होता है, या अपॉन, इन ऑन, दोनों को इंग्लिश में देखे तो वही लफ्ज है। यानी अल्लाह किन की तौबा को कबूल करता है, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, इट्स अपॉन अल्लाह सुभान ताला, क्या कि वो जरूर तौबा कबूल करे, किन की? लिल्लज़ीन यअमलूना सुअ बिजहालतिन, पहली शर्त, जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं, और इसके बाद यतूबूना मिन करीब, ये है हमारा टॉपिक, जल्दी से तौबा कर लेते हैं। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? फौलाई का यतूबुल्लाहु अलैहिम, यही लोग हैं कि तौबा कबूल करता है इनकी अल्लाह, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला यानी हकीम और दाना है, अल्लाह ताला को इल्म भी है और हिकमत भी है। तो सवाल यह है कि इस आयत में जो लफ्ज़ है यतूबून मिन करीब, इससे क्या मुराद है? ये याद रखिए तौबा पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं इसी चैनल पे, nurulquran.com वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आज अगर हम इसकी रोशनी में देखें, जल्दी तौबा करने वाले कौन? दिस इज अ क्वेश्चन, आज इसको समझेंगे। देखिए घर में काम करते हैं आप, खाना खाते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो लिखते पढ़ते हैं, ये कवर, ये जो मेरे सामने टेबल पर डाला हुआ है, मेरा ही पेन खुल जाए और थोड़ी सी उसकी इंक इस पे गिर जाए, और एक टेबल क्लॉथ बहुत अजीज है मुझे, मैं क्या करूँगी? इधर आइए, जल्दी से आइए, ये फौरन उतारें, चीज़ें हटाएं, इसको जाकर पानी में डाल दें। मुमकिन है थोड़ी सी एफर्ट से इंक उतर जाए, पेन की स्याही थी उतर गई, थोड़ा सा उसको और हाथ से मल के धूप में डालेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो साफ हो गया। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड ईयर मैं कहूँ अभी मैं क्या करूँ, सारा गड़बड़ शुरू हो जाएगा, लेक्चर तो पूरा करने दो। एक घंटा गुजर जाता, आपसे मिलने मिलाने के बाद मुझे याद आता है, ओहो इस टेबल पे तो इंक गिरी थी। अब मैंने देखा तो सूख चुकी, पिपड़ी सी बन चुकी है। मैं आपको कहती इधर आइए, इसको पकड़िए और जल्दी से धो के लाए। अब आप जब पानी में डालेंगी ना, अब पानी से नहीं जाएगा दाग, क्योंकि वो एक दफ़ा उस कपड़े के अंदर सूख गया ना, गीली गीली चीज़ उतर जाती है, सूखी भी नहीं। अब क्या होगा, उसके स्टेन को दूर करने के लिए साबुन, हो सकता है शेंक पे रखा हुआ कोई भी फेस सोप है, कोई लक्स है, कोई भी ऐसा कैप्री है, आप उसको लगाएं तो उतर जाए। ये है सेकंड फेज। तीसरी फेज पे चलते हैं। मुझे पता था गिरा है, मैं नहीं उठा सकी, यहाँ से मैं उठने भी लगी, मुझे भूल गया, मैंने आपको भी नहीं कहा। अब बाद में शाम को या अगले दिन जिसने भी इस जगह से चीज़ें मूव की, उन्होंने देखा कि इस कपड़े के ऊपर इंक गिरी हुई है, और अब वो धोनेगी, अब वो कैप्री और फेस सोप से भी नहीं उतरेगा। या तो आपको उसमें सही कोई देसी साबुन डालना पड़ेगा, और अगर ये पड़ा ही रह गया एक महीना बाद में निकाला, तो शायद इसमें ब्लीच डालेंगे तो फिर दाग जाएगा। और कभी कभी तो सिर्फ ब्लीच से भी दाग नहीं जाते, भट्टी में डाल के कपड़े को पकाते हैं। ये है जी आज का टॉपिक। यह तू बून अमीन करीब कौन लोग हैं, जो हमाकत और नादानी से कोई गुनाह कर बैठे। नंबर एक, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या सगीरा, यानी मेजर सिन हो या माइनर सिन हो, और ये भी ना सोचा करे कि ये छोटा गुनाह के बड़ा है, क्योंकि कोई गुनाह छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि जिसकी नाफरमानी की है वो ज़ात बहुत बड़ी है। ठीक है, अल्लाह ने कैटेगराइज किया है हमें मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, लेकिन अल्लाह के लिए बंदे की नाफरमानी कबीरा गुनाह। एक गुनाह पे इबलीस रांदा दरगाह हो गया, और एक भूल से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलवा दिए गए। एक कदम ही होता है, एक चुटकी जहर कभी कभी बंदे की मौत का जरिया बनता है। तो जल्दी तौबा करने वाले कौन है, जो हमाकत से करें, नादानी से करें। नंबर एक, ना वाकफियत से कोई बुरा काम करें, ये दूसरी सूरत है। पता ही नहीं था इतनी शिद्दत है। अब कुरान पढ़ के लोगों को पता चलता है, अरे ये इतना बड़ा गुनाह था। देखिए अकबर गुनाह अकबर उल कबायर में शिर्क है। अब इस शिर्क को क्या करें, शिर्क गुनाह लोग मानते ही नहीं। इसी सफर में सीरीज में पंजाबी का एक लेक्चर हुआ चंद दिन पहले, मैं जोहराबाद के नवाह में थी, तो वहाँ कट्ठा नाम की एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ, तो क्राउड को देखकर मेरे मुंह से उर्दू निकली नहीं, तो मैंने पंजाबी में दर्स दिया, सूरत अल फातिहा पे बातें, और इर्द गिर्द कब्रे बाबे झंडे पीर से जो साथी भी थे उन्होंने भी कहा कि जरा सा शिर का मौजू छेड़िएगा। तो मुझे क्या जरूरत थी उसको छेड़ने की, मैंने कहा चलो जी रोज नमाज पढ़ते हो ना, और सूरत फातिहा जरा देखिए की है। तो जब मैंने सूरत फातिहा में ये आका ना बुद्ध वैया का नस्ताइन शुरू की कि देखो जी मदद तो सिर्फ अल्लाह को लो मंगी दी है, तानवी पंजाबी तो आंदी है ना आपको आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन्होंने गल शुरू की थी, ऐसे बड़ा क्राउड था, 500-600 औरत थी, खुले मैदान में था, ढेर तंबू लगे हुए थे। तो मैंने ऐसी बात शुरू कर दी, तो मैंने कहा कि मदद तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है ना, और तो कोई दे नहीं सकता। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कब्रों में कोई जा चुके हैं तो उनसे तो नहीं ना बंदे को कुछ मिलता। तो एक बड़ी अच्छी सिस्टर थी, बाद में तो उससे दोस्ती हुई, प्यार से मिल के भी गई सब। तो वो कहने लगी ना जी ना, वलियाँ कलो मंगी दें। तो बस फिर वो आप सुनिएगा, अब मैं सुनाऊंगी तो सारा लेक्चर रिपीट होगा। अब अगर आ गया कभी तो आप सुनिए, क्योंकि वो इतनी मैंने ठेठ पंजाबी बोली उनकी टोन में जो मेरे सामने थे, कि हम खुद भी वैसी पंजाबी नहीं बोलते। लेकिन बहरहाल उस सिस्टर को पता ही नहीं था, वही बातें तो सारे करते हैं, सुनी सुनाई। हर फिर सारी बात उस पर हो गई। तो बाद में आई, मैंने कहा बाजी तुसी बड़ी जुरत की थी, मैं तुम्हें इनाम देना, मैं तुम तोहफा दे के जाना है, तुसी मेरे को लाना। तो मैंने कहा बाकियों को भी पता होता, बाकी और तो उसको करी चुप कर, नहीं तू चुप कर, तू क्यों बोल रही। तो वो माशाल्लाह अच्छी थी, बोलती रही। फिर मेरे पास आई, मैंने उसको पैसे निकाल के दिए, मैं कहा बाजी इसका अच्छा सा तोहफा लेना। और वहां टेबल के पास मेरे कह के गई, बाजी असी पढ़े लिखे जो कोई नहीं है, सानू की पता, अज तुसी दस्से तो अखा खुल गई हैं। और वो हिट प्रोग्राम गया, सब साथी कह रहे थे सबसे ज्यादा उसमें हमें फायदा हुआ। सच्ची बात है, नहीं पता, 100 रुपया दे के बाबा जी की कब्र नु सजदा करा लो, बिलीव मी, झंडियां लगा लो, पता ही नहीं है, नादानी है। अब शिर्क अकबरुल कबायर है, तो कितने लोग हैं जो इससे बचे हुए। छोड़े हम कहते हैं हम नहीं जाते बाबों के पास, तो ये नमाज, हम में से किसको नहीं पता कि नमाज दीन का पिलर है। एक ये टेबल की चौथी टांग हटा देना तो ये सारा कुछ गिर जाएगा। तो नमाज तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक। क्या हमें नहीं पता कि इस्लाम में नमाज की क्या जगह है? क्या हमें वक्त की नमाज के बारे में हदीसें नहीं पता? क्या हमें फजर और असर की नमाज को कज़ा करके लेट करके सुस्ती से पढ़ने वाले का नाम नहीं पता क्या? नमाज के साथ जो बेहयाई और बुराई रुकती है हमें नहीं पता, तो कितने पढ़ते हैं? आपके इस मुसलमान मुल्क 97.7 इसकी मुस्लिम आबादी में शायद 5 से 10% लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है जहाँ बाबा को मिले जो भी रस्ती में फकीर भी उनको भी कहते हैं नमाज पढ़ी है। तो कल हम कहीं खड़े थे तो ये नमाज पढ़ी, तो वो जो वहाँ कुछ थे ऐसे बेचारे काम कर रहे थे कुछ, तो उन्होंने कहा क्या नमाज पढ़ लो तुसी जाओ जी पढ़ो। तो इन्होंने कहा नमाज पढ़ दे, कहते जी तो फारक उन्हें पढ़ लेने। यानी उसकी टोन ऐसी बेसख्ता थी कि अल्लाह को नहीं जरूरत इतनी, हम मसरूफ बड़े जी तो फारक हो मांगे पढ़। जैसे आप मुझे कुछ कहते मैं कहूँगी अच्छा फारिग होंगी तो बात कर लूंगी, इतनी बेनियाजी थी अंदाज में। इसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तो ये शर्त है। एक होती है नावाकफियत, एक होता है उसकी शिद्दत नहीं पता। आपको पता है कि पानी गर्म है टूटी में, लेकिन ये नहीं पता होता कि उबल रहा है और आपका हाथ जल जाना है, ये है बात। तीसरी बात, जो गुना तो कसद और इरादे से करें लेकिन इसके बुरे इंजाम और आखिरत के अजाब से गाफिल हों। बचपन से लोग सुनते आए सूद हराम, सूद अल्लाह से जंग, फाज़नु बिहर्बे मिन अल्लाहि व रसूली, सबको पता है ना। जब हमें ये सब कुछ पता है तो फिर कितने हैं माशाल्लाह जो रुके हुए हैं, अल्लाह ने बचाया हुआ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। और याद रखिए फिर बंदे को जब पता होता है ना ये गुनाह, तो वो गुनाह ऐसे नहीं करता कि हाँ अल्लाह मैं गुनाह कर रहा हूँ, वो कहता नहीं ये जायज़ है, आज के दौर में जायज़ है, ये है ही नहीं, वो तो और सूद था, वो तो यूजरी थी, ये तो फलां था। यानी बंदा कहता है कि रब तू भी मान कि ये गलत नहीं है, तो यतूबू न मिन करीब क्या है कि इंतज़ार नहीं करते बूढ़े होने का, इंतज़ार नहीं करते कि हज कर आएंगे तो तौबा करेंगे, वो इंतज़ार नहीं करते कि कोई मुसीबत घर में पड़े तो फिर अल्लाह याद आए फौरन। तौबा होती क्या? थोड़ा सा इसको इसके साथ देखेंगे तो आपको और भी समझ आएगा। आप देखिए लफ्ज़ तौबा में ऐसे लगता है कि ता का लफ्ज़ है ताबा, हालांकि इसमें औब है। अवाब लफ्ज़ बड़ा प्यारा है कुरान में, हज़रत दाऊद के लिए भी आता है, इन्नहु काना अव्वाबा। अव्वाब कहते हैं बार बार पलटने वाला। बच्चा जो है ना छोटा सा, वो बार बार माँ के पास आता है, जरा सी बात में री 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 करता, कभी उसको बोतल खुलवानी है, कभी उसको पानी चाहिए, कभी उसको खिलौने चाहिए। अव्वाब होना क्या है? पलटना, लौट कर आना, रुजू करना। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो दिल पे गहरा थब्बा पड़ जाता है, और तौबा दिल का नूर है, नफ्स की पाकीजगी है। नफ्स पे पड़े हुए गुनाहों के वो धब्बे, जो अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, फिर दूसरा करता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक वक्त आता है कि पूरा दिल काला हो जाता है। अगर आप आज जाकर बच्चों के साथ एक एक्सपीरियंस करें, यकीन करें उनको कभी नहीं भूलेगा। प्लेन वाइट चार्ट पेपर लें, बगैर लाइनों के, कच्ची पेंसिल पकड़ लें हाथ में, और सारे अपने बच्चों को बिठा लें घर में जो है, उनको दिखाएं ये क्या सफेद, फिर उसमें से किसी एक बच्चे से कि इस पे एक डॉट डालो। अब करीब वाले को दिखेगा डॉट, दूर वाले को नहीं दिखेगा। फिर दूसरे से, फिर बच्चों को दे दें पेंसिलें, कहने इस पे डॉट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और वो उस पूरे सफेद सफ़े में एक खास दिल सा बना लें, तो उसके अंदर इतने डॉट डालेंगे कि थोड़ी देर बाद वहां आपके बैठे हुओं को भी डॉट ना भी दिखे, लेकिन वो वाइट नहीं दिखेगा, ग्रे दिखेगा। और अगर नुक्ते बढ़ाते जाएं या पेन गहरा ले लें तो एक वक्त दूर से दिखेगा वो काले रंग का दिल है। ये है कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम, दिलों पे मोहरे हैं। इमाम मुजाहिद इस तरह से करके दिखाया करते थे अपने हाथ को, कहते थे कि दिल खुले होते हैं, दिल रोशन होते हैं। फिर तुम एक गुनाह करते हो ना तो ये छिंगली उंगली, छोटी चीची बोलते हैं जिसको, ये उंगली बंद हो जाती है। फिर दूसरा गुनाह करते हो तो ये दूसरी उंगली बंद हो जाती है। फिर तुम तीसरा गुनाह करते हो, तीसरी, चौथी, और इस तरह पूरा दिल ये मुट्ठी की तरह बंद हो जाता है। ये है खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, दिलों पे मोहरें लगती हैं, दिल मुर्दा हो जाता है। तौबा दिल की जिंदगी है, दिल स्याह हो जाता है, तौबा दिल का नूर है। गुनाह हमारे नफ्स को प्ल्यूट कर देते हैं, जैसे ये बाहर पोल्यूशन, धुआं, मट्टी, रेत, तौबा नफ्स की पाकीजगी है। तौबा का मतलब क्या है कि छोटे बड़े तमाम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, और अल्लाह तआला की मासियत और नाफरमानी को तर्क करके इसकी इताअत इख्तियार की जाए। अब आप कहते हैं कि ये पता कैसे चलता है? देखिए कल रात हम कहाँ थे, खुद से पूछिए। कल के पूरे दिन में मैंने क्या किया, ये दूसरा सवाल पूछिए। फिर तीसरा सवाल खुद से पूछिए कि आज पता है लास्ट सैटरडे को मैं किधर थी, यानी पूरा एक वीक का हिसाब कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पांचवा या चौथा, पूरा एक महीने में देखिए मैंने क्या क्या किया। याद है हमें तो नाक पे मक्खी बैठने जितना भी एहसास कोई नहीं, फिर अगला गुनाह करने तैयार हो जाते हैं। देखिए बंदे से गुनाह हो सकता है लेकिन जान के नहीं करता। चलते चलते पाँव फिसलेगा, लेकिन कुछ जान के केले के छिलके पे स्लिप हो तो बेवकूफ है। तो गुनाह बंदे की तबीयत का हिस्सा नहीं है, ये बाहर की चीज है। आपकी मेरी जिस्म में अगर एक छोटी सी लकड़ी की फांस आ जाए ना, तो हम सुई से निकलवाते हैं। कभी पहले देखा होगा, चारपाइयों की फांस आ जाती थी, पेंसिलों की कुछ आती थी ना, तो सुई का सिरे से उसको निकलवाते थे। यानी हमारी सुंगली में एक फांस जितनी जगह भी खाली नहीं है जिसमें हम कुछ रख सकें। इसी तरह तबीयत में, फितरत में अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे गुना नहीं रखा। तभी तो आप देखिए कि आदम और हवा जब भूल से एक दरख्त का फल चख गए, तो उसके फौरन बाद उन्होंने जन्नत के लिबास जब उतरते देखे, तो फौरन ही उन्होंने अपने जिस्म को पत्तों से छुपा लिया। तो गोया के गुना आपके डीएनए में नहीं है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने फौरन दुआ क्या मांगी? आप सूरत अल अराफ में पढ़ते हैं ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। किसने सिखाई थी? क्या उन्होंने फ़ैनी करीब में से ये दुआओं में से दुआ याद की हुई थी? ये बताती है, लिख ले, गुना इंसान की फितरत में नहीं है, ये बाहर से घुसी हुई फांस है। और तौबा उस फांस को निकालने का एहसास है, ये बंदे के दिल के अंदर डली हुई है, आदम अलैहिस्सलाम की तरह। तो तौबा करना बंदे की फितरत में है। इसकी कुछ शरायत है, कंडीशंस दोहरा लीजिए, आपको भी आता है। यानी हमारे लिए एक सवाल है बहुत बड़ा कि क्या वाकई मैं तौबा करती हूँ? मिसाल दे देती हूँ, फिर समझना आसान है। एक शख्स सारी जिंदगी शराब पीता रहा, उम्र 50 साल की हो गई, सांस लेने में रुकावट है। चेकअप हुए, डॉक्टर ने जब उसके लंग्स का स्कैन किया तो उसने कहा, बात सुनो, अगर तुमने अब मजीद शराब पी तो तुम्हारे फेफड़े गल जाएंगे और तुम्हें लंग्स कैंसर होगा। अब जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, वो छोड़ देता है शराब। सवाल लिखिए, क्या ये शराब का छोड़ना उसकी तौबा होगी? बताएगा कोई आप में से? तौबा नहीं है। अब तो वो बीमारी के डर से छोड़ रहा है ना। सिगरेट सारी उम्र पीने वाला बंदा, अब उसको डॉक्टर से कहा, अगर तुमने मजीद सिगरेट पिया तो तुम्हारे फेफड़े काले हो जाएंगे, तो ये तौबा तो नहीं। तो बस पहली बात, किए पर शर्मिंदगी, नदामत, ये क्या किया मैंने, मैंने अपने इतने प्यारे रब का हुक्म छोड़ दिया। तो नदामत शर्त है, हदीस में आता है, नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा है। जरा सा अपने ऊपर लीजिए, साथ ही साथ चेकअप हो जाए ना अपना, वाकई शर्मिंदगी होती है? आप कहते हैं होती है, फिर उसी के फौरन बाद कहती हैं, अब नहीं करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा है आपकी। सिर्फ इस अमल को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, जब किसी भी अमल को बार बार रिपीट करते हैं ना, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है ही तौबा। ये इधर गुनाह किया, उधर अंदर से यतूबू न मिन करीब की कैफियत हो। फिर दूसरी बात है कि जिस गुनाह का इर्तकाब किया, इसको छोड़िए। कोई कही जाता है तौबा इस्तग़फार इस्तग़फार इस्तग़फार, और साथ वो गुनाह भी करता जा रहा है। आप इसको मिसाल से समझिए, आप में से कोई भी हो सकता है, आपके घर में दावत है और आपकी मेड है, बर्तन धोती है। आप उसको कहते हैं, देखो सारे ही बर्तन कीमती हैं, लेकिन ये डिनर सेट बहुत कीमती है, ये मुझे बड़ा अजीज भी है, ये कीमती भी बहुत है, कल रात बड़े अहम मेहमान थे मेरे, मैंने उनके लिए ये निकाला था। इन प्लेटों को बड़ी एहतियात से धोना। अब आप जरा तस्वर में अपने किचन के सिंक पे या खुरे में चले जाएं। वो कहती है, अच्छा बाजी ठीक है। फिर आपको पूछिए, बाजी ये प्लेट, बाजी आप इसकी बात कर रही थी ना कि ये मैं बड़ी एहतियात से रखूं। आप कहते हैं, जी, और आपके सामने पकड़ के वो जमीन पे फेंकती है। अब क्या होगा? फिर दूसरी दूसरी प्लेट पकड़ के कहती है, ओ बाजी माफ करना माफ करना, ये प्लेट मैंने गिरा दी, मेरे से गिर गई, बाजी यही है ना दूसरी, एक और ठक से फेंकती है। सच बताइए, आपके दिल का क्या हाल होगा? आप कहेंगे, मजाक कर रही हो मेरा, या तो मुंह से ये कहना छोड़ दो कि मैं नहीं तोड़ूंगी मैं नहीं तोड़ूंगी मैं एहतियात करूंगी, या फिर इसको गिराना छोड़ दो। इसके बरक्स वो बेचारी जिसने आपसे सुन लिया कि ये बड़ी कीमती चीज है, अब वो बड़ी एहतियात से उसको जोड़ने की कोशिश में थी, और जब बंदा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है तो फिर और ही गड़बड़ होती है। उसके हाथ से प्लेट गिरी, टूट गई, आपने भी देख ली, अब भी आपको दुख होगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा उस पर। आप कहेंगे, वो बेचारी डरी हुई है, और वो तोड़ते ही या उसके हाथ से गिरी तो वो तो रोने लगे, हाय बाजी मुझे माफ कर दो, हाय बाजी मैंने बड़ी कोशिश। ये है यतूबू न मिन करीब। इस लिहाज से मैं माजरत के साथ कहने लगी हूँ, क्योंकि लफ्ज गुना कहने से भी अब हमें समझ ही नहीं आता कौन सा गुना है। इस ख्याल से तो हर शादी ब्याह और हर फंक्शन के बाद हमको बाहर बैठ के रोना चाहिए, नदामत के आंसू, शर्मिंदगी के आंसू, गिल्ट के आंसू, कि अल्लाह मैंने आज फिर गलत काम कर दिया, अल्लाह आज फिर मैं लोगों से डर गई, अल्लाह आज फिर मैंने लोगों को खुश करने के लिए तुझे नाराज कर दिया। ये है यतूबू न मिन करीब। और अल्लाह बार बार आपको नहीं आजमाएगा जब तक नेकियों पे स्टैंड नहीं लेंगे। लोग आपसे गुनाह करवाते रहेंगे, खुद खुश उन्होंने नहीं होना आपसे, रब भी नहीं खुश, और आप खुद से भी खुश नहीं होंगे। आप जरा सके, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, पर मुझे आप फोर्स नहीं कर सकते। कभी हम घर बचाने के शौक में, कभी ससुराल बचाने के शौक में, कभी बच्चों के रिश्ते जोड़ने के शौक में लोगों को नाराज नहीं करते, रब को नाराज कर देते हैं। एंड पे रिजल्ट परेशानी, डिप्रेशन। सच्ची खुशी उसको मिलेगी कि जो लातात अली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक पे काम करेगा। बंदे भी तभी खुश होंगे जब अल्लाह आपसे खुश होगा। तीसरी शर्त याद रखिए कि आइंदा गुना ना करने का पुख्ता अज़्म। ठीक है, हो गया, आइंदा नहीं करूंगा। और अल्लाह के नबी की हदीस इब्ने माजा में मौजूद है 4252 नंबर की के अनदमुत तौबा। नदामत यानी शर्मिंदा होना ही तो असल में तौबा है। तो तीन शर्तें सुन ली, चौथी शर्त भी लीजिए, और वो क्या है? अगर गुनाह का ताल्लुक हुकुल इबाद से हो, बंदों से, और बंदों में आपके भाई बहन, कोई भाई के साथ मामला चला विरासत का, जायदाद का, कोई रिश्ते का, कोई बहन के साथ मामला था, उसकी बेटी आपने ली नहीं ली, क्या किया, कोई ना कोई हक तलफी अगर बंदों से हुई, तो चौथी शर्त ऐड होगी, और वो क्या है कि उस बंदे से जाके माफी मांगिए और उसका जो हक मारा है वो अदा करने की कोशिश की जाए। भाइयों ने बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया बाप के मरने के बाद, और ये कह के टाल दिया क्या हुआ, इनकी शादी भी तो की थी ना, जहेज दिया था। तो हालांकि अपनी शादी पे, लड़के की शादी पे थोड़ा खर्चा कोई करते हैं आज, बहू को कपड़े नहीं देते, जेवर नहीं देते, हजार हजार बंदे के खाने नहीं खिलाते, लेकिन चूंकि लड़की को कुछ कुर्सियां मेज ज्यादा दे दिए होते हैं तो कहते हैं वो जायदाद होगी। यानी जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, उसको तो मस्त कर लिया, और जो एक इतना बड़ा हक है जिस पे इल्मुल फराइज है, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, चले इसको केस बनाइए। अब वो भाई है, उसको एहसास हो गया ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अब सिर्फ एहसास काफी नहीं है, सिर्फ शर्मिंदगी काफी नहीं है, उसको अपनी बहन को वो हिस्सा देना पड़ेगा। आप कहते हो तो खत्म हो गया, मुख मका हो गया, भाई बहन को बैठना पड़ेगा, आपस में कुछ लेन देन कीजिए, और बहन खुशी से अपने दिल से उसको कह जो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मजबूर कोई नहीं कर सकता, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए कि आप देखिए कि गुनाहों से माफी मांगना तौबा नहीं, ये इस्तिग़फ़ार है। दो लफ्ज़ हैं, गफरा और ताबा। पिछले गुनाहों को उसके ऊपर पहले इस्तिग़फ़ार होती है, फिर तौबा होती है, और गुनाह छोड़ना और उस पर इजहार नदामत करना, मग़फ़रत तलब करके नेकी तात और तकवा की तरफ पलट जाना तौबा है। बिल्कुल वही है कि घर में गंदगी है, झाड़ू पकड़िए और साफ कीजिए। सिर्फ आप कहते रहे हाय बड़ी शर्मिंदा हूँ, हाय घर गंदा है, हाय हर गंदा, ये है इस्तिग़फ़ार। झाड़ू पकड़कर सफाई करना, ये है तौबा। इस तरह याद रखिए, बंदे के गुनाहों पर इकदाम जो होता है ना, उसके कुछ दर्जे होते हैं, यानी लोग गुनाहों के एतबार से मुख्तलिफ किस्म के हैं। पहला दर्जा क्या है, उंगलियों पर नोट कर लीजिए, ऐसा बंदा जिसने कभी गुनाह ही ना किया हो, तो ये फरिश्तों की खसूसियत है या नबियों की, यानी अंबिया कराम से गुनाह नहीं होते थे, वो मासूम अनिल खता होते थे, और दूसरी बात यह कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते। दूसरे दर्जे पे चलिए, सेकंड लेवल, गुनाहों का इकदाम होता है, फिर उस पर इसरार होता है, कभी इन पर नदामत ना हो और ना कभी इनको छोड़ने का ख्याल आए, ये शैतानों का दर्जा। शैतान होते हैं, वो कहते हैं हम बार बार भी करेंगे और शर्मिंदा भी नहीं होंगे और इनको छोड़ेंगे भी नहीं। तीसरा दर्जा जो आपका मेरा है, बनी आदम, आदम के बच्चों का, और वो क्या है, गुनाह सरजद हुआ, फौरन इस पर नदामत हो और आइंदा इसको तर्क करने का पुख्ता अज़्म कर लीजिए, ये है तौबा। और याद रखिए कि तौबा का बंदे और अल्लाह ताला से ताल्लुक होता है। आपके लोगों से मामला पड़ते हैं ना, मासी घर में आती, पूरा महीना काम करती, आप उसको पैसे देते है ना, एक ताल्लुक। आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, फीस देते हैं, पढ़ाते हैं, आप दुकान पे गए, कपड़ा खरीदा, पैसे देके आ गए, है ना, ऐसी चीजें। तौबा जो है ना, ये बंदे और अल्लाह के बीच का लेन देन है, डील है एक। कैसे? आप देखिए कि बंदे का अल्लाह से तौबा करना, अल्लाह का बंदे की तौबा को कबूल करना, ये इसको अगर आप पैरेलल बनाए ना, तो एक गुलाम जो अपने आका का नाफरमान बन के उसे मुंह फेर गया था, अब अपने किए पर परेशान है, पशेमान है, और एतात और फरमा बरदारी के साथ उसकी तरफ पलटा है, ये बंदे का अल्लाह से तौबा करना होता है। इसके बरक्स अल्लाह ताला का नाम है तवाब, अल्लाह का बंदे की तौबा को कबूल करना, गुलाम की तरफ से मालिक की नजर इनायत जो उससे फिर गई थी और वो अब नए सिरे से उसकी तरफ आ जाए, ये अल्लाह का बंदे के लिए तौबा वाला मामला है। जरा सा सोचिए, अगर कयामत के दिन ये पता लग गया कि हमारा रब हमसे नाराज है और हमारे जिस्म पर गुनाहों के कुछ धब्बे बाकी बच गए, क्या करेंगे? आज तो हम बिल्कुल केयरलेस हो सकते हैं। मौत के वक्त बंदे को अपनी असल दिखने लगती है। आज नामे अमल छुपा हुआ है, कल खुलेगा। फिक्र कीजिए कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे। सवाल लिखिए कि किन की तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसका जवाब बहुत ही प्यारी हदीस है, आप सब ने सुनी होगी लेकिन हमेशा अच्छी लगती है। सही मुस्लिम की रिवायत है 6989 नंबर की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रात का तीसरा पहर होता है, अल्लाह ताला अपना दस्ते रहमत फैला देता है ताकि दिन का गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन को अपना दस्ते रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो इस वक्त तक यही करता रहेगा यहां तक कि सूरज मगरिब से थुलू हो जाए। ये है अल्लाह का तवाब होना। बच्चा कपड़े गंदे करके आता है, माँ कहती है चल तेरा मुंह धो, चल तेरे कपड़े बदलूं। छोटे छोटे बच्चों वाली माएँ जब खास तौर पे बच्चे खेलने की उम्र में आ जाएं तो दिन में शायद 2-3 दफा उनके कपड़े बदलती हैं। खाना खाया कपड़ों पे फेंक दिया, बाहर खेलने गए मट्टी लगा दी, केक मल दिया मुंह पे, आइसक्रीम मल दी। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गंदा नहीं देखना चाहती, इसी तरह से अल्लाह हमें गुनाहों में लोथड़ा नहीं देखना चाहता। इस पे हमारे पास अलग से एक लेक्चर मौजूद, एक नहीं यानी बहुत दफा वो किया हुआ लेक्चर कि हमारे गुनाहों की माफी कैसे होती है। इंशाल्लाह अगर फायदा हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको उसका भी तरीका दूंगी ताकि हम अपने बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाए। नंबर एक लिखिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को कैसे माफ करता है या हमारी तौबा के अमली स्टेप्स क्या हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे हमारे गुनाह झाड़ता है। देखिए जिस्म से बाल झड़ते हैं, सर्दियों में ऊपर से छाल उतरती है, सर के बाल कंघी में आते हैं ना, ये नेचुरल फिनोमिनन है। पहले निकलते हैं ना फिर और उगते हैं, ये है पहला मसला। नंबर वन, आप ये फेस नोट कीजिए और इसको लिखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बाद आपका दिल बहुत खुलेगा। नंबर एक, कुदरती तौर पे कुछ गुनाह हमारे झड़ते जाते हैं, ये फितरी तौबा है क्योंकि अगर सारे जिस्म पे रह गए तो हम तो शक्ल ना दिखा सके। दूसरा स्टेप लिखिए, कुछ गुनाह जो बाकी रह गए अभी अल्लाह सुभाना ताला हमारी नेकियों की वजह से छुपा देता है। इन्नल हसनाती युज़हिबुन सय्यिआत, एक नमाज दूसरे नमाज तक गुनाहों का कफारा है, एक जुमा दूसरे जुमे तक कफारा है, एक रमजान से दूसरा रमजान, एक उम्रे से दूसरा उम्रा, एक हज से दूसरा। तो ये दूसरा स्टेप है, बंदा कुछ नेकियां करता है तो वो खुद ब खुद डिलीट और फिर अपडेट होने का बटन दब जाता है, ये सेकंड फेज होता है। अब पहले सूरत में हमें पता भी नहीं चला और ठल गई अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे में हमने नेकी की लेकिन अल्लाह ने उसके बदले हमारे गुनाह धो दिए। तीसरा मरहला क्या होता है, अल्लाह फिर देखता है कि अभी भी गुनाह बाकी हैं तो हम पे कोई मुश्किल डालता है, वो बीमारी परेशानी औलाद का गम शोहर की मसला कोई मुकदमा डाल गया, यानी मासाबा कुम में मुसीबत है, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो क्यों होती है, किस तरह आती है। सूरह शूरा में और कई और जगहों पे अल्लाह जो पैगाम देता है उसका खुलासा क्या है, फबीमा कसबत ऐदी को, ये जो आज शुरू में भी आयत पढ़ी है ना, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बीमा कसबत ऐदी को, तो तीसरी क्या मुश्किलात में डालता है और उस मुश्किल में अल्लाह याद आ जाता है। जवान बेटा फौत हो गया, दिल रब की तरफ जुड़ गया, भाई चला गया, घर टूट गया, कई मसले हो सकते हैं, इंसान को अचानक किसी दुख में वाकई अल्लाह याद आ भी जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीन मरहले गुजर गए, अभी भी कुछ गुनाहों की छाप ज्यादा है, अभी भी इंसान से गुनाह हो रहे हैं, तो फिर चौथा मरहला क्या होगा, जो अल्लाह ना करे हमारे गुनाह इतना डिलेड हों कि हम उसकी वजह से परेशान हों, और वो मरहला क्या होगा, मौत की सख्तियाँ। निज़ाम में अल्लाह पाक करता है, हदीस में आता है कि बंदा मोमिन पर मुश्किलें आती ही रहती हैं हत्ता के उसकी मौत के वक्त अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। ईमान वाले का आखिरी डायसेक्शन, ईमान वाले की लास्ट क्लिनजिंग मौत के वक्त होती है, यहाँ मामला खत्म होता है। आपने कभी फेशियल कराया हो, मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स वो आपको ऑफर करेंगे, किसी में एक चीज, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी, कोई बड़ा ही महंगा भी होता है। क्या पता चला, जैसे क्लींजिंग के लिए डीप क्लींजर्स होते हैं ना, कोई उसके अंदर से फिर अच्छी तरह क्लींजिंग करता है, कोई स्टीम भी देता है, कोई मास्क भी लगाता है, कोई स्क्रबिंग करता है, ये सारे आपके मेरे गुनाहों से पाकी के तरीके हैं। कुछ लोगों के गुनाह मौत पे भी नहीं पूरे धुले, गंदे ही बड़े थे, तो फिर अल्लाह कब्र के अजाब में डालेगा, उसमें पाक कर देगा, फिर धुल जाएंगे। नेक्स्ट फेस कब्र के अजाब से भी नहीं पूरे खत्म हुए तो अल्लाह सुबहान तआला फिर उनको मैदाने महशर के अजाबों में पकड़ेगा। और जिनके वहां भी ना हुए, आखिरी जगह जहां से बंदे के गुनाहों को धोया जाएगा वो पुलसरात है, गिरेंगे लोग जहन्नुम में। वाइम मिन को मिल्ला वारी दुहा, तुम में से हर एक उसके ऊपर से गुजरने वाला है, और फिर वहां से धुल धला के आग में गिर के पक पका के फिर निकलेंगे। और खास तौर पर पुलसरात का जो आखिरी हिस्सा है कंतरा नाम का, वहां इंसानी मामलात धुलने, भाई बहनों के विरासत के खेर फेर, जायदादों के झगड़े, रिश्तों की बातें, उसका लेना उसका देना, और ये सारे कारोबारी डंडियां मारे, पैसा लेके भाग गए, ये गवर्नमेंट मुलाजमीन, ये टैक्स के चोरी करने वाले, ये वापडा स्टेशन के साथ खुर्द बुर्द करने वाले, इन्होंने जाके वहाँ पुलसरात के आखिरी कोने में खड़े होना। जन्नत सामने लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा, लोगों ने गिरेबान थामे होंगे कि इधर आओ पहले मेरे पैसे दे के जाओ। दुआ कीजिए कि हम अपनी तौबा को इतना ना डिले करें कि पुलसरात के डायसेक्शन रूम में से गुजरना पड़े। आंकड़े हैं उसके ऊपर, पुलसरात के एक डायसेक्शन रूम एक ऑपरेशन थिएटर है, जिसम से हराम का खून वहां नुचड़ेगा, सारी खियानतें वहां जाके निकलनी है, और जो नहीं पाक होंगे फिर अल्लाह उनको जहन्नम की भट्टी में डाल के पकाएगा, जैसे अब सफेद कपड़े को भट्टी में पकाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम इतनी लंबी कहानी कड़ी करें? आज रात को भी अल्लाह आएगा, अल्लाह ताला ने तो बहाने बना दिए आपके मेरे लिए। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता, वो कौन से हैं? नंबर एक, मौत के फरिश्ते को देखकर तौबा करने वाले। इसी आयत 17 सूरह निसा के आखिरी हिस्से में यही है कि वो लोग जो गुनाह करते ही रहते हैं, हत्ता के जब मौत का फरिश्ता देखा तो फिर कहते हैं हम तौबा करते हैं। जो इंजाम से बेखौफ थे, बेपरवाह थे, तमाम उम्र गुनाह करते गए। और दूसरे वो जो कुफर की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। मुस्नद अहमद की रिवायत है 10172, हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है या इसको बख्श देता है जब तक पर्दा वाक़े ना हो। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये पर्दे से क्या मुराद है? तो फरमाया किसी जान का शिर्क की हालत में मर जाना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में ना करे कि जो अपनी तौबा को पीछे, कहते ना गाइडेंस डिलेट गाइडेंस डिनाइड, हिदायत को जितना पीछे करते जाएंगे उतनी हिदायत रिजेक्ट होती जाएगी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला उसकी भी तौबा कबूल नहीं करता जिसे गुनाह का एहसास हुआ, नदामत कर सकता था, अल्लाह की तरफ पलट सकता था, अल्लाह से सच्ची तौबा कर सकता था, नहीं की, यानी केयरलेस एटीट्यूड कह लीजिए। करना के आलमे नजाज से पहले पहले तौबा कर लीजिए। इब्ने माजा की रिवायत है 4253, आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है मालम युगरगिर, जब तक गरगरा ना लग जाए, यानी जान हलक में ना आ जाए। बड़ी लंबी रिवायत है मुस्नद अहमद की 10170, जिसमें खुलासा यह है कि सहाबा ने आपस में बात की कि कब तक, आपके भी जिम्मे सवाल होगा कि अल्लाह ताला कब तक तौबा कबूल करता है, वो जो आखिरी लम्हे हैं वो कितने हैं? तो किसी ने कहा मौत से एक दिन पहले तक, किसी ने कहा कि नहीं मैंने सुना है मौत से निसफ दिन तक, तीसरे ने कहा कि नहीं मैंने सुना है कि मौत से निस दिन पहले नहीं बल्कि चौथे, यानी किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो रावी हैं इस हदीस के उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी से कहते हुए सुना कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करते हैं जब तक इसका दम गले में अटक नहीं जाता। ये है अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत। तो हमने क्या सीखा इस पूरे सेशन से? अमल के जो नुकात है, पहली बात है कि रवैये की इस्लाह तौबा की लाजमी शर्त है। मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, बीवी रूठ के चली जाती है, कोई महीना दो महीने से उस महके में रहती है, फिर दोनों को याद आती है, माँ बाप वो कहते हैं उसको मनाओ, चलो तौबा करो, चलो ये है वो है, तो वहाँ जाकर क्या कहते हैं? अच्छा आइंदा नहीं ऐसे करना, एक और मौका देते हैं। बीवी को भी कहते हैं तुम भी ज़रा दबके रहना, मियाँ को भी कहते हैं खबरदार इस पर हाथ ना उठाना। अब अगर वो इस्लाह ना करे तो आप देखिएगा अगले महीने फिर लड़ेंगे, महीना भी नहीं गुजरेगा, दो चार दिन बाद शौक पूरा हो जाएगा, फिर लड़ाई शुरू होगी। इस्लाह शर्त है, चेंज कीजिए। दूसरी बात है कि अगर कोई शख्स इस बुराई से बाज ना आए जिसका वो मुर्तकिब हुआ जो कर रहा था, तो जुबान से लाख तौबा 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 का विर्द करे, वो तौबा बिल्कुल गैर मोतबिर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी को ऐसी तौबा करते देखा तो आपने फरमाया तौबतुल कज़्ज़ाबीन, ये झूठों की तौबा है, इसके मुकाबले में तौबतुन नसूखा। सूरह तहरीम में आता है तौबतुन नसूखा। नसखा कहते हैं पैबंद लगाने को, फटा कपड़ा जब कभी लोग सीते थे, अब तो सीते ही कहाँ हैं, नहीं बड़े हमारे पास, तो पैच लगाते थे और उसको तुरपाई से जोड़ते थे, वो पैच लगाने को नसखा कहते हैं। और नासिख नसू, खालिद शहद को भी असल उन नासिखुन कहते हैं, यानी आपकी रूह के ऊपर जो धज्जियां उड़ गई थी उसके ऊपर तौबा के फाहे लगाकर अल्लाह की तरफ चले। दूसरी बात हमने ये सीखी कि हर रात हर दिन अपने नफ्स का मुहासबा कर, दूसरों को छोड़िए अपनी फिक्र कीजिए। तीसरी अमल की बात लिखे, किसी गुनाह को भी मामूली नहीं समझना और फजूल कामों से अलग रहना है। तौबा करने में देर नहीं करनी, इंशाल्लाह बोलिए। तौबा और इस्तग़फ़ार में इखलास और नदामत का भरपूर इजहार करना है। जो गुनाह हो गया जितनी जल्दी उसका तदारुक कर सके उसको कर दीजिए, ताकि वही मिसाल याद रखिएगा कि स्याही का दाग पक्का ना हो जाए। अगर एक बार गुनाह किया, तौबा की, फिर वो गुनाह हो गया, अब क्या करें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करें। एक दिन बंदे को अपने आप से शर्म जरूर आएगी कि तुम हमेशा ये गलत काम करते हो। किसी जगह कोई वाकया पढ़ा था कि सुना था कि एक शख्स था, तो वो किसी होटल में गया तो उसने देखा, अक्सर जाता था तो वो एक बंदे को देखता था, जब बहुत रश होता था ना तो वो एक बंदा आता, खाना खाता, ऑर्डर करता और चुपके से नजर बचा के उठ जाता। उसने 2-3 दफा ये बात नोट की। एक दिन उठ के ओनर के पास गया, कहने लगा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इधर आपके पास रोज एक आदमी आता है, पहले इंतजार करता रहता है कि लोग आए, जब बहुत रश हो जाता है तो वो अंदर आता है, खाना ऑर्डर करता है, खूब अच्छी तरह खाता है, फिर रश को देख कर ना तो चुपके से नजर उठा लेता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपका माल खा रहा है और आपको पैसे नहीं दे रहा। तो जो ओनर था ना, आप सुनिए ये बात बड़ी अहम है आपके मेरे लिए, इस टॉपिक के लिए, कहने लगा कि मुझे पहले ही पता है, मुझे और भी कस्टमर्स ने ख्याल दिलाया है और मुझे खुद भी पता है। कहा अच्छा आपको पता है तो फिर भी उसको आने दे रहे हैं। कहने लगा सुनो, ये जितनी मेरे रौनक लगी हुई है ना, बरकत है, इतने लोग आते हैं, ये उसकी दुआ से तो आते हैं। वो बाहर खड़ा होकर दुआएं क्या करता है, अल्लाह कस्टमर भेज, अल्लाह कस्टमर भेज, अल्लाह भेज, इसका भरे और मैं खाना खाने जाऊं, तो अगर वो इतनी दुआएं करके लोगों को भेजता है तो अगर वो खा जाता है तो मुझे क्या लगे। सुभान अल्लाह ही वबी। हाँ, हर तौबा के वक्त ये याद रखे कि मैंने आइंदा दोबारा नहीं करना। देखिए बच्चा चलते चलते गिरता है, फिर चलता है, फिर संभल जाता है। लोग कहते लो जी ये तो गलत बात है, ऐसा है वैसा है, नहीं गलत नहीं है, आप एक दिन खुद से शर्मिंदा होंगे। जो तौबा करना छोड़ते हैं उनका मिसाल है कि सफाई करना छोड़ दें। पाकिस्तान में तो आप रोज ही सफाई करते हैं ना, कपड़े एक दिन पहन ले तो शायद ही कोई दोबारा पहनते हो, धो के पहनते हैं ना। सफाई ना करें तो आपके घर का क्या हाल हो जाए, जूता यहाँ 2 दिन पॉलिश ना करें तो उसका धजियां उड़ जाए। तो बस यही है, साथ साथ सफाई करते जाइए करते जाइए, एक वक्त आएगा कि आपका दिल कहेगा कि हम अपने आप को बचा लें। तो ये चंद बातें थी, जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सब यहाँ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ऑनलाइन पे एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। बहुत ही सिंपल खूबसूरत सा एक रिफ्रेशर कोर्स है, हर जुमे को हुआ करेगा, 22nd मेरा ख्याल है या 21st जो आ रहा है इसी जनवरी में, उससे ये कोर्स शुरू हो रहा है। इसकी बस एक शर्त है कि वो किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो या कर चुका हो, यानी ये बेसिकली एक मेरे साथ स्टूडेंट्स का एक रेपो है, जिसमें हम इन डेप्थ स्टडी भी सूरतों की तफसीर की सिलेक्शन किया करेंगे, फिर इसी तरह सिलेक्शन हदीस की है और इसमें हमारी कुछ हिकमत की बातें भी हैं। हर जुमे को सिर्फ 2.5 घंटे की क्लास है, ना इसमें ग्रामर है ना तजवीद है, और इसको रखा ही इस तरह से है कि वो स्टूडेंट जो माशाल्लाह ख्वाहिश रखते हैं कि कुछ कहें, कोई बात सुने, जैसे मैं भी आप में से भी कुछ पीरो जाना 21 के हों, कोई पिछले भी हों, तो उनके साथ एक लाइव होगा, और जो एडमिन्स हैं उनके लिए भी, यानी ये कोर्स एक किस्म का स्पेशली डिजाइन कोर्स है उन लोगों के लिए जो अभी कुरान के कोर्सेज में आ रहे हैं और उनका दिल करता है कि हमें मजीद चीज़ें मिले, और उनके लिए जो हमारे एडमिन्स हैं, जिम्मेदारान हैं, जो बेचारे पूरा हफ्ता मेहनत करके दूसरों को सिखा रहे होते हैं, तो उनके लेवल की कुछ चीज़ें हैं। और आपको इसका फ्लायर इंशाल्लाह ऑनलाइन पे मिलेगा, तो दूसरों से शेयर कीजिए और अल्लाह ताला करे कि हम इन सारी चीज़ों को खैर का जरिया बना सकें। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुम अल्लाह खैर, आपने ये इख्तमाम किया, अल्लाह आपका कबूल करे। जो हमारे साथी आए दूर से करीब से, अल्लाह ताला उनका आना कबूल करे। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, मस्जिदों को आबाद रखने वालों को अल्लाह आबाद रखे, और हमारी नस्लों के, हमारे जवानों के दिल मस्जिदों में टिका दे। हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, उनके बच्चों को भी अल्लाह सुबहाना ताला अपने घरों की मोहब्बत दे दे। अल्लाह ताला इस उम्मत को शिर्क से बचाए, बिदत से बचाए, और अल्लाह ताला में कुरान सुन्नत की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में ले जाकर पेश करने की तौफीक अता फरमाए।